ओम शांति। 21 फरवरी 1983। प्रश्न है, क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने की निशानी क्या होगी? उत्तर, क्षमा पर जो फिदा हो चुके वो स्वयं भी क्षमा के समान हो गए, समा गए तो समान हो गए। जैसे क्षमा सबको रास्ता बताती है, ऐसे क्षमा समान रोशनी द्वारा रास्ता बताने वाले, रास्ते में भटकने वाले नहीं। यह करे वह करे, यह क्वेश्चन समाप्त, फुल स्टॉप आ जाता है। तो याद और सेवा इसी में रहो, चक्र सब समाप्त। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्र लगाने जाएंगे, कभी संबंध का चक्र, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्र। अगर सब चक्र समाप्त हो गए, पूरा फिदा हो गए, तो फिदा होना अर्थात जल मरना। उन्हों को सिवाय क्षमा के और कुछ नहीं। 21 फरवरी 83 की मुरली है। प्रश्न पूछा है, क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने की निशानी क्या है? अगले संडे की मुरली है, क्या निशानी है? जो क्षमा पर फिदा हो चुके वो स्वयं भी क्या बन गए? क्षमा के समान हो गए, समा गए तो समान हो गए। जैसे क्षमा सबको रास्ता बताती है, ऐसे क्षमा समान रोशनी द्वारा रास्ता बताने वाले, रास्ते में भटकने वाले नहीं। यह करे वह करे, यह क्वेश्चन समाप्त, फुल स्टॉप आ जाता है। तो याद और सेवा इसी में रहो, चक्र सब समाप्त। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो, चक्कर रहा हुआ होगा तो क्या होगा? चक्र लगाने जाएंगे। कौन कौन से चक्र लगाएंगे? कभी संबंध का चक्र, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्र। अगर सब चक्र समाप्त हो गए, पूरा फिदा हो गए, तो फिदा होना अर्थात जल मरना। उन्हों को सिवाय क्षमा के और कुछ नहीं। तो फिदा होना अर्थात बलिहार जाना, फिदा होना अर्थात संपूर्ण समर्पण, फिदा होना अर्थात जल मरना, फिदा होना अर्थात सर्वस्व स्वाहा कर देना, फिदा होना अर्थात सरेंडर, फिदा होना अर्थात मिट जाना, समा जाना, एक हो जाना, फिदा होना अर्थात बलिदान, फिदा होना अर्थात स्वयं की हस्ती को मिटा देना, संपूर्ण रूप से स्वयं को न्योछावर कर देना, फिदा होना अर्थात न्योछावर, बलिदान, समर्पण, सरेंडर, स्वाहा और उत्सर्ग। हिंदी में शब्द है उत्सर्ग, उत्सर्ग अर्थात संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण स्वाहा, संपूर्ण स्वयं को झोंक देना उस कार्य में, उस बात में, उस मिशन के लिए, उस लक्ष्य के प्रति संपूर्ण स्वयं को स्वाहा कर देना। यह उत्सर्ग का समय है। उत्सर्ग बलिदान से भी बड़ा है, सरेंडर से भी ऊंचा शब्द है उत्सर्ग। उसमें स्वयं का कुछ भी नहीं रह जाता। अंग्रेजी शब्द सरेंडर उस देशों में अंग्रेजी भाषा में जब प्रयोग किया जाता है या फिर विदेश में जब सरेंडर शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ दूसरा है, और भारत में जब प्रयोग किया जाता है अध्यात्म में तो उसका अर्थ दूसरा है। उधर सरेंडर हो जाना अर्थात हार जाना। फ्रांस की आर्मी ने जर्मन की आर्मी के सामने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, अर्थात घुटने टेक दिए, हार मान ली, हार स्वीकार कर ली। जापान ने हार स्वीकार कर ली, जापान सरेंडर हो गया। यह उधर का अर्थ है। जो हमसे अधिक शक्तिशाली है उसके सामने घुटने टेक देना, हार मान लेना, पराजय स्वीकार करना, परास्त हो जाना, पराभूत हो जाना, ये सरेंडर के अर्थ है उधर के। परंतु अध्यात्म में या तो भारत में सरेंडर के ये अर्थ नहीं है। वो सरेंडर नहीं है, वो तो सम्मान है, सम्मान अलग, हार स्वीकार कर लेना। तो विदा, समर्पण, स्वाहा, न्योछावर, उत्सर्ग, ये सभी शब्द किसके लिए है, सरेंडर अर्थात यहां पर हारना नहीं है, यहां पर स्वीकृति से स्वयं के जीवन को अर्पण कर देना है। टू ले डाउन वंस लाइफ, अपने जीवन को किसी के हाथ में दे देना, अब तुम चलाओ, इसमें अब हमारा कुछ भी नहीं है, ये जो हमारा था वो हमने तुमको दे दिया। तो उसमें कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना निश्चय होना चाहिए, ये होगा उनको जिन्होंने ये किया। तो ये फिदा होने का अर्थ है। तो यहां बाबा कह रहे हैं, अगले संडे की मुरली का ये प्रश्न है, परंतु उस मुरली में शायद नहीं है, पर डेट वही है। क्षमा पर जो फिदा हो चुके वह स्वयं भी क्षमा के समान बन जाते हैं। फिदा होने वाले जिस पर फिदा हुए हैं उसके जैसा बनने लग जाते हैं। समा गए तो समान हो गए। जैसे क्षमा सबको रास्ता बताती है, ऐसे क्षमा समान रोशनी द्वारा रास्ता बताने वाले। जो जो क्षमा के कर्तव्य वो परवानों के कर्तव्य। जैसी फ्लेम वैसा मौत, जैसी क्षमा वैसा परवाना। उसके समान बन जाना अर्थात वो प्रकाशवान है, तो उसके जैसा ही दीप्तमान, रास्ते में भटकाने वाले नहीं, एक तो खुद भी भटकने वाले नहीं और दूसरों को भी भटकाने वाले नहीं, कहीं फंसने वाले नहीं, अटकने वाले नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, यह करे या वह करे। यह क्वेश्चन समाप्त। ये जो सामंजस्य की अवस्था है, ये जो सामंजस्य की अवस्था या फिर डाउट की स्थिति, सस्पिशन की स्थिति, या फिर बीच में अटकने वाली स्थिति, त्रिशंकु की तरह, हेलमेट की तरह, इधर या उधर, करूं या नहीं करूं, जाऊं या ना जाऊं, ये सारे प्रश्न ही मिट गए। Thy will shall be done। जाय विधि राखे राम, ताय विधि रहिए। जैसा वो रखे, जहां रखे, जैसा रखे, जिस हाल में रखे, अब उसके ऊपर छोड़ा है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। तो रास्ता बताने वाले स्वयं भटकने वाले नहीं। और फुल स्टॉप आ जाता है तो याद और सेवा इसी में रहो। चक्र सत समाप्त। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्र लगाने जाएंगे। चक्कर अगर रहा हुआ है तो कभी संबंध का चक्र, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्र। चक्र कुछ भी बन सकता है, अध्यात्म में भी चक्र बन सकते हैं, किसी में भी व्यक्ति फंस सकता है। जैसे एक व्यक्ति को कांटा चुभा तो उसने दूसरा कांटा लिया और दूसरे कांटे से पहले कांटे को निकाला और उसके बाद में जिस कांटे से निकाला उसके प्यार में पड़ गया। कि कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं कि तुमने वो कांटा निकाला और सारी उम्र वो कांटा लेकर चल रहे। क्यों? धन्यवाद, प्रेम, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, अहोभाव कि भाई इस कांटे ने निकाला। तो ये भी क्या हो गया? फंस गया। अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के अंधेरे से, ज्ञान के प्रकाश से निकाला, ठीक है। अज्ञान तो चला गया परंतु उस ज्ञान को ही पकड़ के रखा। अर्थात ये बातें संसार में कही जाती है, शास्त्र, वेद, उपनिषद, इनमें से जो लेना है लिया, या गुरु, उसने बहुत कुछ सिखाया, वो ज्ञान को लिया परंतु उसको भी साथ साथ पकड़ लिया, या उसमें ही मोह हो गया और वो ही बाधा बन गया, वही बाधा बन गया उस परम लक्ष्य तक पहुंचने तक। जैसे दूसरा एक उदाहरण है, महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया है, वो एक बार देखते हैं कि 5 व्यक्ति नाव को अपने सिर पर उठाकर चल रहे हैं। तो वो उनको पूछते हैं, ये क्या है, नाव को क्यों उठा के लेके जा रहे हो? तो कहते, नाव को नहीं उठाया जाए, उठा के लाए। अरे हम उधर उस पार भटक गए थे जंगल में और टापू था, जाने का कोई मार्ग नहीं था, बड़ी मुश्किल से ये नाव मिली और इसी नाव के सहारे हम उस पार से इस पार आ गए। अगर ये नाव ना मिलती तो हम उसी टापू में जंगल में मर गए होते। कितना उपकार है इस नाव का, इस नाव ने इतना उपकार किया है हम पर, हम कभी भूल ही नहीं सकते और इसलिए अभी इस नाव को उठाकर हम चलेंगे क्योंकि बिना इसके तो हम मर गए होते ना। महात्मा बुद्ध उनसे कहते, उससे अच्छा था मर जाना ही अच्छा था, क्योंकि इसको लेके तो सारी उम्र मरोगे अब, थोड़ा 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 थोड़ा। जहां से व्यक्तियों से ज्ञान लिया, अनुभव से लिया, जहां से लिया ले लिया, परंतु वो किताबें उनमें फंस गए। सोर्स जो है, जहां से वो आया है, उसमें ही फंस गए। अगर वो किसी व्यक्ति ने हमको कभी मदद कर दी, हम बहुत संकट में थे और किसी ने मदद कर दी, अच्छी बात है, वो तो हम निकल गए उससे बाहर, पर हम उसको उसमें फंस गए क्योंकि उसने मदद की थी। तुम्हारा बहुत उपकार, उपकार भी ठीक है परंतु चक्र, संबंध, गहरा लगाव, आसक्ति उस व्यक्ति में जिसने मदद की, जिसने उपकार किया, जिसने ज्ञान में लाया। ब्रह्मा बाबा ने ये भी तो कहा, मुझ में भी नहीं फंसना है, सीधा तुम्हारा कनेक्शन उधर हो, मुझे याद मत करो। वो दूसरी बात है कि अव्यक्त बाप दादा क्या कह रहे हैं, परंतु इशारा सबने ऊपर किया, ब्रह्मा ने भी इशारा ऊपर ही किया है। तो ना खुद कहीं फंसने वाले, ना दूसरों को कहीं फंसाने वाले, ना खुद दूसरों में फंसने वाले, ना दूसरों को अपने में फंसाने वाले। हम दूसरों में नहीं फंस रहे पर दूसरे अभी हम में फंस रहे, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे, प्रेम स्वरूप या विकराल स्वरूप? उसके कल्याण के लिए हमें कठोर बनना पड़ेगा, नहीं तो वो हम पर निर्भर हो जाएगा हर छोटी छोटी बात के लिए। और अध्यात्म में ऐसा अगर हो गया तो बड़े बड़े गुरु जो गिरे हैं नीचे, क्यों गिरे हैं? इसी एक बात के कारण। तो क्षमा क्या करती है? सबको रास्ता बताती है। ऐसे क्षमा समान रोशनी द्वारा रास्ता बताने वाले, रास्ते में भटकने वाले नहीं। यह करे या वह करे, अब यह प्रश्न ही खत्म, यह क्वेश्चन समाप्त, फुल स्टॉप आ जाता है। तो याद और सेवा इसी में रहो, चक्र सब समाप्त। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्र लगाने लगेंगे। मन का स्वभाव है गुलाम बनाने का या बनने का। चित्त के दो स्वभाव है, या तो डोमिनेट करने का, दूसरों को प्रभुत्व, दूसरों पर आधिपत्य जमाने का, दूसरों के अपने वश में करने का, या स्वयं दूसरों के वश हो जाना। चित्त तरह तरह के मार्ग ढूंढता है गुलामी के, स्वयं को गुलाम बनाने के, उसमें भी उसको सुख आता है। पुरुष का स्वभाव है गुलाम बनाने का, प्रभुत्व, डोमिनेट। स्त्री का स्वभाव थोड़ा सा अलग है इससे, समर्पण का स्वभाव है, गुलामी स्वीकार करने का, बहुत गहरे तल में। वैसे तो स्त्री पुरुष की कोई बात नहीं है, परंतु ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उसको प्रेयसी अपनी प्रेमी को कहेगी कि तुम हाथ पकड़ के मुझे ले चलो, ये क्या है, बीच में खड्डा है, तो वो हाथ देता है, तो वो हाथ पकड़ती है और वो उसको खींचता है, बिचारी। उसको तो किसी ने नहीं खींचा, वो तो खुद आया, तुम करो, तुम करके दो, ये क्या है। समर्पण ठीक है, परंतु वो मदद चाहती है, तुम पकड़ो हाथ और ले चलो मुझे। एक चाहता है समर्पण करूं, दूसरा चाहता है दूसरे समर्पण करे। सूक्ष्म में वो जो स्त्री है उसे प्रिय लग रही है, इसलिए क्योंकि उसके अहंकार की तृप्ति होती है वहां पर सूक्ष्म में। जब कोई समर्पण सामने करते, तन मन धन, वहां समर्पण है, तो यहां एक्चुअली तृप्ति हो रही है अहम की, मैं की। इसलिए मन ने मार्ग ढूंढ रखे हैं गुलाम बनने के। हम दूसरों के गुलाम बनते हैं, इमोशनल स्लेवरी, भावनात्मक गुलामी, इमोशनल स्लेवरी, सर्फडम स्लेवरी। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें कंट्रोल करें, हम चाहे तो संपूर्ण स्वतंत्र हो सकते हैं, किसी पर भी भावनात्मक अवलंबन, इमोशनल डिपेंडेंस अगर होगा तो वहां से इमोशनल स्लेवरी का जन्म होगा, भावनात्मक गुलामी। हम गुलाम हैं, वो चाहे तो हमें सुखी कर सकता है, वो चाहे तो हमको दुखी कर सकता है, वो चाहे तो हम खुश, वो चाहे तो हम दुखी। उसके हाथ में हमने ही रिमोट दिया है और हम चाहते हैं उसी के पास रहे। वो एक व्यक्ति हो सकता है या अनेक, बहुधा एक होता है जिससे प्रेम भी बहुत है, परंतु ये प्रेम नहीं बंधन है। अपने बंधनों को अलग अलग नाम देने में मनुष्य कलाकार है। अपने गुलामी को प्रेम का नाम देने में सिद्धहस्त है, परंतु है वो भी गुलामी, क्योंकि हम किसी और पर निर्भर है, डिपेंड है, किसी के फोन पर, किसी के एसएमएस पर, किसी के कॉल पर, मैसेज पर, रिस्पांस पर। उसने अगर रिस्पांस दिया, हमने जो भेजा, अगर नहीं दिया तो हम दुखी, या इंतजार, लंबा दीर्घकालीन इंतजार, इमोशनल, ये जो है ना स्लेवरी है। वो स्लेवरी तो हम उससे तो मुक्त हो गए, वो तो सबसे पॉलिटिकल स्लेवरी से मुक्त होना सबसे उथला, सबसे सुपरफिशियल तल है। सबसे गहरी स्वतंत्रता तो ये है कि यहां से स्वतंत्र होना है। वो तो कोई आया, किसी ने राज्य कर दिया था, वो चले गए, उसका ही मना रहे 15 अगस्त और 26 जनवरी। वो मनाने का इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मनाना ये है। आत्मा मुक्त नहीं है, आत्मा गुलाम है व्यक्ति की, व्यक्तियों की या समुदाय की, कहीं ना कहीं गुलामी है। ये आत्मा स्वतंत्र हो जाए, उसकी स्वतंत्र सोच, उसमें इच्छा हो, वो स्त्री कहे कि तुम जाओ आगे, मैं अकेले आऊंगी, नहीं चाहिए तुम्हारा हाथ, आवेश में नहीं, क्यों चाहिए कोई, अकेले चलो, गिरो, उठो, ठोकरे खाओ, चोट लगने दो, रक्त बहने दो, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, जब तक आंसू पसीना और रक्त से लथपथ होकर व्यक्ति नहीं चलता कैसे मजबूत बनेगा। वो छोटा सा बच्चा होता है तो ऐसा कोई है जो बिना गिरे जिसने चलना सीखा बचपन में, कोई है? या मां सोचे कि मेरा बेटा गिरना नहीं चाहिए तो ही मैं इसको चलाऊंगी, पंगु बना देगी वो उसको हमेशा के लिए। तो कभी संबंध का चक्र, कभी स्वभाव संस्कार का चक्र हम ही तैयार करते हैं और हम ही उसमें उलझते हैं और हम ही फिर चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। मुरली याद है ना, वो छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, छोड़ो तो छूटे वाली मुरली। पेड़ इधर है, एक इधर, एक सामने पेड़ खड़ा है, उसमें पक्षी है तीन, कौन से तीन पक्षी? चतुर पक्षी, भोले पक्षी, और तीसरा समझदार। उधर समझदार नहीं, समझदार तो इधर है, वो उधर तीन है अलग प्रकार के, वो भोले जिनको पता ही नहीं कि ये डालियों को छोड़ना है। एक वो पक्षी है जिनको चतुर है वो, तीसरे का नाम, तीसरे का कुछ और नाम है, एक को तो पता है परंतु फिर भी पकड़े हुए है और चिल्लाते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, और एक बीच में और एक पक्षी है, एक तो भोले है जिनको पता ही नहीं क्या करना है, जिनको यही नहीं पता कि हम फंसे हुए हैं। पहले तो ये पता चले कि हम फंसे हुए हैं इस व्यक्ति के बंधन में, इस संबंध में, इस फ्रेंडशिप में, और ऊपर से नाम रखा है सेवा, ईश्वरीय सेवा, पर है वही बंधन, और सोचते हैं कि इस बंधन के कारण से फायदे भी कितने हैं, नई नई आइडियाज, नई शेयरिंग, सब कुछ मिल रहा है उस व्यक्ति के द्वारा, पर हो सकता है जो वो व्यक्ति के बिना मिले वो कहीं अधिक ज्यादा होगा, वही बंधन है। क्यों नहीं डेरिंग करते हैं? इसके लिए कहा ना, प्रेम स्वरूप नहीं, विकराल स्वरूप, ताली। बंधनों को काटना है ना तो तलवार लगेगी, और किसके बंधनों को? दूसरे को नहीं, फिर तो हम काट सकते हैं दूसरों को, ऐसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे, यहां बेड़िया हमने ही पहनी है और अपनी तलवार इधर ही चलानी है, और बेड़ियों को तो सजा के रखा है, कुछ कुछ सोने की है उसमें, कैसे तोड़ के फेंक दे, परंतु बेड़ी तो बेड़ी है। तो इन सभी चक्र से मुक्त होना अर्थात समर्पण, फिदा, सात प्रकार के समर्पण। सूरज भाई ने बहुत पहले किसी एक क्लास में सुनाए थे, बहुत पहले, बहुत पुरानी क्लास, सात प्रकार के समर्पण। सबसे पहला तन, देह का समर्पण। देह हमारी नहीं है, हमारा लक्ष्य है खाली इस देह को जीवंत रखना, स्वस्थ रखना, भोग विलास के लिए नहीं है, ना तो हमारे ना तो किसी और के, हमारे ही नहीं तो किसी और का तो प्रश्न ही नहीं आता। देह जो है वो सेवा में लगा देना, देह जो है वो सेवा में सफल कर देना, देह जो है उसमें आसक्ति हमारी भी ना हो, अपनी भी नहीं, अगर हमारी होगी तो दूसरों की भी होगी, यदि हमें इसे सजाना है तो उस सजावट से दूसरे भी आकर्षित होंगे। वो सुना है था ना विनोबा भावे का, एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक महिला बैठी थी जिसने गजरा पहन रखा था, तो उसने पूछा था ये क्या है, उसने कहा गजरा, तो कहा तुमको दिखता है क्या? नहीं, तो किसके लिए पहना है? जब तुमको दिखता ही नहीं पीछे, तो यदि हम स्वयं को सजाते हैं किसी भी तरह से, या ऐसे वस्त्र धारण करते हैं कि जिससे दूसरे आकर्षित हो जाए, तो हम तो निमित्त बन रहे हैं दूसरों को देहभान में लाने के, दूसरे की समर्पण की स्थिति से नीचे गिराने के। तो देह जो है वो स्वाहा किया, देह जो है अश्व है, देह रूपी अश्व घोड़ा अग्नि में, अग्नि कुंड में झोंक दिया, समर्पण कर दिया। अभी इस देह का संबंध हमारा खाली सेवा प्रति है, और इसको ठीक रखने प्रति है बस, और स्वस्थ रखने प्रति है। इसको, इसका स्वास्थ्य हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि इसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है तो वो हम ही कारण है उसके, कोई दूसरा नहीं है। इसके लिए भोग और विलास के लिए ये देह नहीं है। ये देह किस लिए? तप के लिए है, क्योंकि इसी देह में कुछ दिन पहले अभी मुरली चली थी, इस देह को गालियां नहीं दो, उसको बहुत प्यार से चलाओ। वो उदाहरण भी दिया था, कौन सा? घोड़ा और चाबुक। उसको बहुत नहीं मारो संकल्पों से, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, खराब है, इतनी बीमारियां है, इतने कर्म भोग। एक बीमारी जाती है, दूसरी आती है, तीसरी दूसरी जाती है, तीसरी आती है, पुराना है ये तो हो गई। प्रकृति तमो प्रधान है तो देह कहां से सत्व प्रधान रहेगा। परंतु उस देह में हमें तप के लिए सर्वोच्च साधन है ये, क्योंकि हम अगर इस देह से चले जाए तो तपस्या कैसे करेंगे? फिर से छोटा बच्चा बनो, पता नहीं कब फिर तपस्या आरंभ होगी। इसके लिए इस देह में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए इस तन को तपाना है, जिससे इस शरीर की कर्मेंद्रिया भी शीतल हो जाए। नहीं तो कर्मेंद्रियों में आवेग है, कर्मेंद्रियों में उत्तेजना है, जबरदस्त उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है उसमें। वो सारी एक्साइटमेंट शांत होने के लिए जो जो देह में जा रहा है, मुख से, कान से, आंख से, सब तरफ से, वो भी उतना ही पवित्र, शुद्ध, सात्विक, सुपर सात्विक होना चाहिए। पहला समर्पण देह का, तन। दूसरा है उससे सूक्ष्म मन, संकल्प। संकल्पों को समर्पण करना ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मन वश में रखना या करना बहुत बड़ी साधना है। कमजोर, जो उड़ना तो चाहते पर उड़ ही नहीं सकते। एक तो भूले हैं जिनको पता ही नहीं उड़ना है, दूसरे हैं कमजोर जो उड़ना चाहते उड़ नहीं सकते, तीसरे जो है वो चतुर है, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं उधर आना पर वो छोड़ते भी नहीं है। उधर तीन, और ये जो झाड़ है इधर भी तीन थे, कौन कौन से? एक उंगली पर था जो कि श्रीमत, जो कि सहयोगी, एक कंधों पर श्रीमत पर चलने वाला, और एक गोल गोल घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला, वो कौन थे? उसका उत्तर लास्ट में है, याद प्यार के पास, मुरली के एंड में। कई महीने हो गए मुरली को। तो दूसरा समर्पण है मन का। मन तभी शांत हो सकता है जब उसे अर्पण कर दो। जब तक ये कहो कि ये मैं हूं, मैं, तब तक वो शांत नहीं होता है। मैं की दौड़ है बहुत। यहां रख देना, सौंप देना संकल्पों को, मन को, ये दूसरे प्रकार का, ये सूक्ष्म है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तन मन। तीसरा समर्पण है धन का। धन का समर्पण अर्थात ये नहीं कि धन बहुत दे दिया, किस भाव से दिया जा रहा है। इतना दो तो इतना मिलेगा, हमने तो इतना दिया था। उस धन के पीछे अगर नाम की कामना है, उस धन देने के पीछे यदि ये कामना है कि सबको पता चल जाए कि हमने इतना दिया है, या अपना नाम आ जाए वहां पर हॉस्पिटल में ना, हर वार्ड के ऊपर नाम लिखा है जितने दिए पैसे पुण्य कम हो रहा है जब जब देख रहा है कोई उसका, तो धन देना, परंतु जिसको बाबा कहते गुप्त दान, दे दिया और इस हाथ में दिया तो इस हाथ को भी नहीं पता, गुप्त। तीसरा समर्पण, चौथा तन मन धन, चौथा बुद्धि। बुद्धि में अहंकार है, मैं ये हूं मैं वो हूं, उसमें ये लाना कि उसका दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, विशेषता है, सारा कुछ वर्च्यूज सब कुछ जो भी मिला है ऊपर से मिला है, वो चाहे तो हटा भी सकता है सब कुछ। बुद्धि के बाद उससे भी सूक्ष्म है संस्कार, संस्कारों का समर्पण, क्योंकि संस्कार अर्थात ऑटोमेटिक, हम चाहते नहीं अपने आप होते रहता है, आदत और संस्कार ये अपने आप काम करती रहती है। उसके लिए अगर वो बुरी आदतें हैं तो वो समर्पण नहीं होगा वहां पर। श्रीमद के विरुद्ध आदतें बना रखी है तो उन आदतों को तोड़ना पड़ेगा, और आदतों को कैसे तोड़ा जाएगा, बार 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 उसके, इसको कहते हैं अवर्शन थेरेपी। अवर्शन थेरेपी अर्थात जिस आदत से हमें टूटना है उसके विरुद्ध निगेटिव संकल्प करना या उसका नुकसान के बारे में सोचना, चाहे व्यक्ति है चाहे संबंध है चाहे आदत है, उससे हमें नुकसान कितना हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, कैसे छूटेगा स्मोकिंग से, उसको बोलो छोड़ो तो फिर चालू कर देता है, छूटता थोड़ी ना है। किसी ने कहा है ना, आई हैव गिवन अप, टू गिव अप स्मोकिंग इज वेरी इजी, आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। स्मोकिंग छोड़ना बहुत आसान है, मैंने कई बार करा है, कई बार किया है, इतना आसान है। चाय, कोई भी एडिक्शन है, एडिक्शन है सारा कुछ, चाहे चाय ही क्यों ना हो, जो नहीं मिला और बेचैनी हो रही है अर्थात वो लत, मिले तो ठीक नहीं मिले तो ठीक, ये अवस्था हो। अगर इतनी हमारी डिपेंडेंस है कि वो अगर नहीं मिलती है तो बेचैनी होती है, फिर योग नहीं लगता है, फिर चाहिए, फिर इधर उधर ढूंढ रहे कहां से मिले वो, चाहे वो टोली हो कोई भी हो, टोली मीठा खाने के बाद या फिर चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी। चाय लेना चाहिए क्या ब्राह्मण में, ये एक दूसरा प्रश्न है। ठंड लगते हैं। वेयर हैज गॉन मैन्स करेज, एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, मनुष्य का मॉरल स्ट्रेंथ, मनुष्य का जिसको कहते हैं आध्यात्मिक बल कहां गया, कहां खो गया। एंड आई से इन द कप ऑफ टी, और मैं कहता हूं कि चाय के प्याले में वो डूब गया है, ऐसा उसने लिखा है डिपेंडेंस है उसमें, जो सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, वो जो टैनिन और वो कैफीन और वो सारी जो चीजें उसमें है, वो सत्व प्रधान चीजों में नहीं आती है, इतना याद रखना है, वो सत्व प्रधान चीजों में नहीं आती है, सात्विक डाइट में वो नहीं आता है, क्योंकि वो सारी चीजें साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो सब स्टिमुलेंट्स है, उत्तेजक है, सभी उत्तेजक है, वो शरीर में थोड़ी उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, तभी तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए नींद उड़ जाती है, थोड़ी देर के लिए नींद उड़ जाती है। अल्कोहल क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पहले CNS को, ब्रेन को, और फर्स्ट स्टिमुलेशन बाद में डिप्रेशन, ये सारे स्टिमुलेंट्स का है, पहले स्टिमुलेट करता है बाद में डिप्रेस करता है, और बाद में फिर धीरे धीरे आदत बनाता है, और फिर उसके बाद में वही चाहिए। जैसे स्मोकिंग, हमको लगता है स्मोकिंग लोग छोड़ते क्यों नहीं है, स्मोकिंग का संबंध नहीं रहा अब वो करते करके, क्योंकि जब व्यक्ति स्मोकिंग करता है अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो रिलीज हुए हुए केमिकल्स उसके तन मन में सुख और शांति का अनुभव कराता है, एकदम रिलैक्स। अब उसने स्मोकिंग बंद कर दिया तो वो जो केमिकल है वो अब नहीं मिल रहा है, तो उसको वो तलब, क्रेविंग होती है, क्रेविंग, क्रेविंग ऐसी भयंकर होती है कि वो चाहिए, बिल्कुल उसी समय चाहिए। हॉस्पिटल में आते हैं ना पेशेंट, बाथरूम में छुपा छुपा के रखते हैं अपना, वहां जा जा के करते हैं, पीते हैं। कितने आते, एक साधु इधर एडमिट हुआ तो नीचे जाते जाते, एक साधु का मंदिर है ना आबू रोड जाते जाते, वो हनुमान जी के वहां पर, वहां पर तो उसको उसके उसमें इतना गांजा निकला था उसकी पोटली में से। अभी क्यों, चाहे कुछ भी हो, दारू हो शराब हो, क्योंकि वो पीते ही धीरे यहां से केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स फिर अपनी ओर खींचते हैं, वो चाहिए फिर। इसके लिए तो आईवी ड्रग्स क्यों लेते हैं लोग, युवक, क्योंकि वो लेने के बाद एकदम तन बदन में एक अनुपम अद्भुत सी शांति शरीर में अनुभव होता है, शरीर में बहुत रिलैक्सेशन महसूस होता है, सारा कुछ टेंशन चला जाता है और सारा शरीर शिथिल शांत हो जाता है थोड़े समय के लिए, और थोड़े देर के बाद फिर से वही प्यास। जैसे खुजली हो गई है किसको, तो खुजली होती है, खुजली करो खून आता है, खून आता है तो रोक देता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर खुजली होती है, तो हाथों की खुजली है वो, वैसे ही है वो भी। तो कुछ भी, पर हम अवर्शन थेरेपी की बात कर रहे थे, आदत संस्कार, अवर्शन थेरेपी अर्थात अभी उससे छोड़ना है किसी को, तो कैसे करेंगे, उसको धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उससे नुकसान क्या होता है और उसके प्रति मन में थोड़ी सी घृणा उत्पन्न करनी पड़ेगी, और फिर नई जो आदत है जो धारण करनी है एकदम नहीं छोड़ देना। इसके लिए उनको निकोटीन गम्स या च्यूइंग गम्स दिए जाते हैं कि वो छोड़ो तो ये पकड़ो पहले, फिर उसको भी धीरे धीरे तोड़े छोड़ देना, पर कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए। डायरेक्ट छुड़ा दो कर भी सकते हैं ऐसे कोई कोई, परंतु है ना विठल भाई, डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं ना, हाँ। दृढ़ संकल्प से तो कुछ भी हो सकता है, परंतु पावर चाहिए बहुत ज्यादा, जिससे व्यक्ति धड़ से एक धक से छोड़ दे, परंतु अदरवाइज बाकी लोग इतना एक धक से नहीं छोड़ते, धीरे धीरे उसको रिप्लेसमेंट दो फिर छोड़ते हैं। तो यहां पर भी बुरी आदतें हैं, उनको रिप्लेस करो नई आदतों से, नई आदतें क्रिएट करनी पड़ेगी। वो खुद सोचो उसकी जगह क्या, उसकी जगह बहुत सारी चीजें हैं संसार में, जूसेस से लेके तो हजारों चीजें हैं अच्छी अच्छी, जो ये पीने से वो होता है, वो पीने से वो होता है, ये हम नहीं बताएंगे, वो हर एक का अपना अपना है। किसी को स्नान करके नींद आती है योग में, किसी को स्नान करके फ्रेश लगता है, किसी को चाय पियो तो ऐसा होता है, किसी को चाय पियो तो कुछ होता है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये तो हमारी कंडीशनिंग क्या है। पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सारे, कि कुत्ता है उसको खाना दो तो साथ में घंटी बजाओ, ठीक है। पावलोव नाम का बहुत बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक था मेडिकल में, पावलोव एक्सपेरिमेंट। तो पावलोव ने बहुत सारे प्रयोग किए कंडीशनिंग में, कुत्ता है उसको खाना दो, खाना खिलाने से पहले एक घंटी बजाओ, ऐसा कई दिन तक करा, जैसे खाना खिला उसको लार टपकने लगती है, फिर धीरे धीरे क्या किया, खाना नहीं खिलाया खाली घंटी बजाई तो भी लार टपकने लगी, क्योंकि अंदर कंडीशनिंग हो गया है उस। वैसा ही उसने प्रयोग ऐसे किया कि जिसको स्मोकिंग से छुड़ाना है तो उसको ऐसे केबिन में रखा और वहां स्मोक बहुत सारी सिगरेट रखी, जैसे ही स्मोकिंग लेने जाओ वो करंट लगता था उसको, एक स्मोकिंग लो कि करंट लगेगा, फिर धीरे धीरे ऐसा डर बैठ गया उसके लिए वो कि सिगरेट लेना ही बंद कर दिया आदमी, ऐसे कंडीशनिंग किया। ये सब माइंड का कंडीशनिंग है, हमने जो सोच के रखा है ये माउंट में नहीं रहूंगा, मैं माउंट में रहूंगा ना मुझे ना नहीं मुझे ना क्या हो जाता है, मुझे नहीं बीपी बढ़ जाता है या कुछ तो हो जाता है, ऐसा पहले से ही पकड़ के रखा है। मैं खट्टा खाता हूं ना तो ये घुटने में दर्द होता है, अभी घुटने का और खट्टे से कोई लेना देना है नहीं, पर लोग ऐसे सब बताते हैं। इमली खाता हूं तो ये होता है और पीठ में दर्द होता है, उसका वहां कोई लेना देना नहीं है, कंडीशनिंग। तो संस्कार, अगला समर्पण है तन मन धन बुद्धि संस्कार, कर्म और कर्म के परिणाम। एक है कर्म, जो कर्म किए भक्ति में कहते थे श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु, समर्पण कर देना, उससे भी सूक्ष्म है कर्म का परिणाम। अब परिणाम कभी कभी अच्छा होगा, कभी कभी बुरा भी होगा, हमने बहुत सेवा की कोई भी नहीं निकला दुखी, दुखी होने का काम ही नहीं है, क्योंकि हमने सेवा की और हो गया, परिणाम भी उसको दे दो ना फिर, वो उससे भी सूक्ष्म है छठवा। और सातवा है संबंध संपर्क का समर्पण, जो हमने संबंध बना रखे हैं वो भी समर्पण ये भी बहुत सूक्ष्म समर्पण है। तो सात प्रकार के समर्पण, यह बाबा कह रहे फिदा होने वाले की निशानी, समा जाना, समान बन जाना, चक्र लगाना बंद कर देना, किसी भी चक्कर में नहीं आना, और रास्ते उसके जैसा बन जाना अर्थात क्षमा जैसा बन जाना, दूसरों को भी भटकाना ना, खुद भटकना, करे या न करे ये दुविधा से परे मुक्त, दूसरों को रास्ता बताना, तन मन धन बुद्धि संस्कार कर्म और कर्म के परिणाम, और अंतिम समर्पण सातवां संबंध संपर्क, उसमें चेंज कर देना सर्व संबंध उधर, इधर से हटा के उधर। ओम शांति।